पाठ 36 अध्याय 40 और 41। उत्पत्ति 40 को पूरा पढ़ें। लगभग 11 वर्ष बीत चुके थे जब उसके बड़े भाइयों ने यूसुफ को गुलामी में बेच दिया था। वह अब 28 साल का है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यूसुफ को अब भी लगता था कि उसके परिवार के लोग उसके सामने झुकने के उसके सपने, जो उसकी वर्तमान स्थिति से बहुत जुड़े थे, कोई महत्व रखते थे, या क्या वे बस बचपन के सपने थे? क्योंकि वह जहां बैठा था, वहां से कनान और अपने परिवार से इतने लंबे समय तक दूर रहने के कारण वह शायद उन अनाज के ढेरों के बारे में भूल गया होगा जो उसके सामने झुक रहे थे, और सूरज और चांद और 11 सितारे उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन आइए इस बारे में बहुत स्पष्ट हो जाए कि यूसुफ के लिए उन सपनों का क्या मतलब था। इसका मतलब था कि अगर वे सच थे तो उसे ज्येष्ठ पुत्र का आशीर्वाद मिलेगा कि उसके पहले 10 बड़े भाइयों को छोड़ दिया जाएगा और वह इसराइल के कबीले की सारी संपत्ति और अधिकार का उत्तराधिकारी बन जाएगा। यूसुफ जेल में बैठा है क्योंकि उसके मालिक पोतीपर की पत्नी ने झूठ बोला था और कहा था कि उसने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। वह कितने समय से जेल में बंद था यह जानना मुश्किल है, लेकिन यह इतना लंबा समय था कि उसने जेलर का भरोसा जीत लिया। फिर कुछ हुआ और फिरौन दो उच्च सरकारी अधिकारियों से नाराज हो गया, आधिकारिक प्यालावाहक और मुख्य रसोइयां। ये नौकर के पद नहीं थे, हालांकि हर कोई परिभाषा के अनुसार फिरौन के अधीन था। नहीं, ये लोग संभवतः पोतीपर के ठीक पीछे अधिकार में थे। लेकिन जैसा कि अक्सर ओरिएंटल लोगों के साथ होता है, याद रखें कि ये ओरिएंटल लोग थे, सेमाइट्स मिस्र के लोग नहीं जो अब मिस्र पर शासन कर रहे हैं। कुछ अज्ञात अपराध लोगों को उनकी स्वतंत्रता या उनके जीवन की कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर देते हैं। संभवतः फिरौन बस बुरा अवस्था में था या अनजाने में, क्योंकि ये दोनों अधिकारी स्पष्ट रूप से मिस्र के थे। उन्होंने ओरिएंटल संवेदनाओं का कुछ फूफाह किया और इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और यूसुफ की तरंग जेल कप्तान के घर में रखा गया, आम लोगों की तरह सामान्य जेल में नहीं। कुछ समय बाद एक सुबह यूसुफ ने देखा कि उन दोनों के चेहरे पर उलझन और परेशानी थी। उसने पूछा कि उन्हें क्या परेशानी है और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक सपना देखा था और वे समझ नहीं पाए कि इसका क्या मतलब है। ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने अपने सपनों में खतरा देखा था, बल्कि ऐसा था कि जेल में कोई दृश्य उपलब्ध नहीं था, कोई स्वप्न व्याख्याकार नहीं था जो उन्हें उनके रात्रि दर्शन का महत्व बता सके। उस युग में सपनों को महत्वपूर्ण माना जाता था और इसलिए शुल्क के लिए पेशेवर स्वप्न व्याख्याकार उपलब्ध थे। हम यह देखना शुरू करते हैं कि यूसुफ के सभी कष्टों ने उसे किस स्तर तक पहुंचा दिया था, क्योंकि वह जवाब देता है, क्या व्याख्या करना ईश्वर का काम नहीं है? और वह कहता है, मुझे अपने सपने बताओ। वे आगे बढ़ते हैं। प्याला ढोने वाला पहले जाता है। वह एक बेल की बात करता है जिसमें 3 शाखाएं होती हैं और शाखाओं पर अंगूर उगते हैं जिससे वह फिरौन के लिए शराब बनाता है। तुरंत परमेश्वर यूसुफ को इसका अर्थ बताता है और यूसुफ प्याले ढोने वाले को कुछ अच्छी खबर बताता है। 3 दिनों के भीतर फिरौन प्याले ढोने वाले को उसके पद पर बहाल कर देगा और सब ठीक हो जाएगा।
ऐसा लगता है कि अब इससे रोटी वाला का हौसला बढ़ गया है, जो निस्संदेह प्याले वाले के सपने की व्याख्या को देखने के परिणाम स्वरूप उतनी ही अच्छी खबर की उम्मीद कर रहा था। रोटी वाले, जिसने निश्चित रूप से अपने जीवन के अनुभवों के संदर्भ में सपना देखा था, जैसा कि प्याले वाले ने अपने जीवन में देखा था, उसने अपने सिर पर रोटी की 3 टोकरियां देखी जो जाहिर तौर पर एक के ऊपर एक रखी हुई थी,
क्योंकि सबसे ऊपर की टोकरी पक्षियों को आकर्षित करती थी जो आकर टोकरी से पके हुए माल को खा जाते थे, जबकि वह अभी भी बेकर के सिर पर था। यूसुफ को बेकर को बुरी खबर बतानी पड़ी कि जिस दिन रोटी वाले को बहाल किया जा रहा था उसी दिन बेकर की जान चली जाएगी, और जाहिर है ठीक वैसा ही हुआ। एक छोटी सी बात कई संस्करणों में कहा गया है कि रोटी वाला को पैर से लटका दिया गया था, ऐसा वास्तव में नहीं कहा गया था। वास्तव में जो कहा गया था वह यह था कि उसे पैर पर लटका दिया जाएगा। इस युग में फांसी देना फांसी का सामान्य तरीका नहीं था, लेकिन सिर काटना सामान्य था और अक्सर सिर रहित शव को दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में एक खंभे या एक पैर पर लटका दिया जाता था। अब एक दिलचस्प बात यह है कि मिस्र की चित्रलिपि इस कहानी के कई विवरणों को प्रमाणित करती है। उदाहरण के लिए बेकर के सिर के ऊपर टोकरियां ही रखने का विचार, यह बिल्कुल वैसा ही तरीका था जिस तरह मिस्र में पुरुष सामान ले जाते थे, वे उन्हें अपने सिर पर संतुलित करके रखते थे। बेकर के सिर पर रोटी की ढेरदार टोकरियां ओवन से महल तक रोटी पहुंचाने का एक सामान्य तरीका था जिसे बेकर दिन में कई बार करता था। हम सभी ने इस तरह की चीजें टीवी ट्रैवल शो में देखी हैं। लेकिन बात यह है, आपने कभी किसी मिस्र की महिला को अपने सिर पर भार उठाते नहीं देखा होगा, बल्कि मिस्र की महिलाएं अपने कंधों और पीठ पर सामान ढोती थीं, और यह उस पारंपरिक तरीके से बिल्कुल विपरीत था जिस तरह से ओरिएंटल संस्कृतियों भार ढोती थीं। तो यह छोटी सी अंतर्दृष्टि यूसुफ और अंततः इज़राइल के मिस्र में बिताए समय के बाइबल के आख्यान की प्रामाणिकता के कई प्रमाणों में से एक है। इस अध्याय का अंतिम वाक्य काफी दुखद है, लेकिन यह मानव जाति के लिए बहुत ही विशिष्ट है। यूसुफ ने प्याले वाले के प्रति दयालुता दिखाते हुए अनुरोध किया था कि प्याले वाला अपने पद पर बहाल होने के बाद उसके लिए भी ऐसा ही करे, लेकिन हमें बताया गया है कि अब जब प्याले वाले के लिए सब कुछ सामान्य हो गया था तो वह बेचारे यूसुफ को भूल गया और उसे उस अपराध के लिए तरपता हुआ छोड़ गया जो उसने किया ही नहीं था। उत्पत्ति 41 पूरा पढ़ें।
मैंने आपको पहले कुछ ऐसा बताया था जो शायद आप में से कुछ लोगों को चौंका सकता है कि यूसुफ के समय मिस्र पर सेमाइट्स का शासन था, नूह के बेटे शेम के वंशज। दरअसल जब यूसुफ को मिस्र का शासक बनाया गया था उस समय मिस्र का फिरौन मिस्री नहीं था, और लगभग 150 साल की अवधि के दौरान मिस्र के इतिहास के बारे में आधिकारिक मिस्र सरकार के रिकॉर्ड अचानक बंद हो गए। और इसका कारण यह है कि राजाओं और फिरौन ने हार और अधीनता के समय को लिखने की आदत नहीं डाली। इसे समझने में मदद मिलती है कि यूसुफ इतना शक्तिशाली कैसे बन गया और कैसे इसराइल पहले बढ़ने और समृद्ध होने के लिए इतना स्वतंत्र था, लेकिन बाद में कैसे यह मिस्र के क्रोध का शिकार बन गया और इसराइली अंततः गुलाम बन गए।
मैंने बताया कि उस समय के कई अभिलेख थे, तथापि जिन्हें लिखित रूप में रखा गया था, और ये पुस्तकें मिस्र के निजी नागरिकों द्वारा संरक्षित हैं, और ये इन विदेशी शासकों हिक्सोस शासकों की कहानी बताती हैं। मैं आपको मिस्र के इतिहासकार मनेथों द्वारा लिखित एक संक्षिप्त विवरण पढ़ना चाहूंगा जिन्होंने इनमें से कई अभिलेखों को संकलित किया और उन्हें हमारे विचार के लिए छोड़ दिया। हमारे राजा तूतिमाइस थे, उनके शासन काल में यह सब हुआ। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर हमसे क्यों नाराज थे। अप्रत्याशित रूप से पूर्व के क्षेत्रों से अज्ञात जाति के लोग आए, जीत के प्रति आश्वस्त होकर वे हमारी भूमि पर आक्रमण करने लगे। बलपूर्वक उन्होंने इसे बिना किसी युद्ध के आसानी से अपने अधिकार में ले लिया। हमारे शासकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने हमारे शहरों को बिना किसी दया के जला दिया तथा देवताओं के मंदिरों को नष्ट कर दिया। सभी मूल निवासियों के साथ बहुत क्रूरता से व्यवहार किया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को मार डाला तथा दूसरों की पत्नियों और बच्चों को गुलामी में ले गए। अंत में उन्होंने अपने ही लोगों में से एक को राजा नियुक्त किया। उसका नाम सैलेटिस था तथा वह मेम्फिस में रहता था तथा ऊपरी और निचले मिस्र से उसे कर वसूलता था। और जब उसे सईस प्रांत में एक ऐसा शहर मिला जो उसके उद्देश्य के अनुकूल था, यह नील नदी की बुबासाइट शाखा के पूर्व में स्थित था तथा इसे अवारिस कहा जाता था, तो उसने इसका पुनर्निर्माण किया तथा दीवारें खड़ी करके तथा इसे बनाए रखने के लिए 240,000 लोगों की सेना लगाकर इसे बहुत मजबूत बनाया। सैलेटिस हर गर्मियों में वहां जाता था आंशिक रूप से अपना अनाज इकट्ठा करने और लोगों को उनकी मजदूरी देने के लिए, और आंशिक रूप से अपने सशस्त्र सैनिकों को प्रशिक्षित करने और विदेशियों को भयभीत करने के लिए।
यहां हमारे पास एशिया से आए सेमिट्स द्वारा मिस्र पर विजय प्राप्त करने का एक बहुत ही भावुक और संक्षिप्त वर्णन है। हमारे पास विजेता राजा का एक अरबी नाम भी है, सेलिटिस।
मिस्र के लोगों को यह बात कितनी बुरी लगी होगी कि इन उनके विचार से असभ्य भीड़ द्वारा उन्हें इतनी आसानी से और तेजी से पराजित कर दिया गया। फिर भी परमेश्वर की अथाह दिव्य कृपा से यूसुफ को शक्तिशाली पद प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा इज़राइल को 4 शताब्दियों से अधिक समय तक मिस्र में बंधक बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब मैं चाहता हूं कि आप मनेथो द्वारा उल्लेखित एक नाम पर ध्यान दें, अवरिस, क्योंकि निर्गमन में हम इस शहर के बारे में बात करने में कुछ समय बिताएंगे। अवरिस वह बड़ा शहर है जो मिस्र के गोशेन की भूमि में इब्रानियों इसराइलियों का घर बन गया। अधिकांश धर्मनिरपेक्ष पुरातत्वविदों का कहना है कि यह वही जगह है जो अस्तित्व में नहीं है, एक ऐसी जगह जहां यूसुफ के समय के बाद इब्रानियों की एक बड़ी आबादी रहती थी। और ध्यान दें कि यह कितना बड़ा स्थान था, क्योंकि इस सेलिटिस नए विदेशी फिरौन ने इसे सुरक्षित करने के लिए लगभग 25 लाख सैनिकों को वहां तैनात किया था। एक आखिरी बात, थोड़ी देर पहले मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, बिडोडन, सेमाइट और ओरिएंटल, एक तरह से एक दूसरे के स्थान पर रहा हूं, इसे समझाता हूं। कुल मिलाकर महाद्वीपीय भूभाग जिसमें वह शामिल है, जिसे हम आज मध्य पूर्व कहते हैं, एशिया है। इसलिए मध्य पूर्व से आने वाले लोगों को एशियाई या एशियाटिक कहना उचित है, एशिया के लोग। ओरिएंटल का मतलब पूरे एशिया महाद्वीप के लोगों से नहीं है, बल्कि मध्य पूर्वी लोगों से है और चीन तक फैले लोगों से है। ओरिएंटल एशियाई लोगों का एक उपसमूह है। सेमाइट वे लोग हैं जो शेम के वंशज हैं। अब्राहम के वंशज सेमाइट हैं, क्योंकि अब्राहम एक सेमाइट थे। इसलिए अरब और इब्रानी दोनों सेमिटिक लोग हैं, बेडोइन सेमिटिक लोगों की एक निश्चित शाखा भी, जो रेगिस्तान में रहने वाले और घुमक्कर थे। इसलिए यह कहना उचित है कि जिन लोगों ने मिस्र पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, वे क बेडोडन थे, क्योंकि वे रेगिस्तान में रहने वाले थे। दो सेमाइट्स, क्योंकि वे शेम के वंशज थे। गे ओरिएंटल्स, क्योंकि वे मध्य पूर्वी संस्कृति का हिस्सा थे। और घे एशियाई या एशियाटिक्स, क्योंकि वे एशिया महाद्वीप से थे। आइए अब हम उत्पत्ति 41 का अध्ययन जारी रखें। पिछले अध्याय के अंत से 2 साल बीत चुके हैं। यूसुफ 30 साल के करीब है और जेल अभी भी उसका घर है। सपने अब तक यूसुफ के लिए परेशानी के अलावा कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन अब यह सब बदलने वाला है।
फिरौन को 2 सपने आए और वे उसे परेशान कर रहे थे। इतना परेशान क्यों? क्योंकि वे इतने वास्तविक लग रहे थे कि उसके जागने के बाद पदसात कहता है कि उसे यह एहसास होने पर राहत मिली कि वे सिर्फ सपने थे। फिर भी विषय वस्तु ऐसी थी कि वे एक सपने से ज्यादा लग रहे थे, एक दृष्टि की तरह। इसलिए उसे लगा कि उसे अर्थ का पता लगाना चाहिए। उसने अपने सभी जादूगरों और बुद्धिमानों को इन सपनों का अर्थ बताने के लिए बुलाया। फिरौन द्वारा बुलाए गए पुरुषों के ये 2 समूह उसके दिमाग के भरोसेमंद थे। उसका सरकारी मंत्रिमंडल, वे मिस्र के आध्यात्मिक और बौद्धिक अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और वे स्तब्ध थे। मिस्र का धर्म आध्यात्मिक कई देवी देवताओं के साथ बहुत सारे जादू और टोना टोटका से युक्त था। फिरौन अपने सभी विषयों की तरह मिस्र के प्राचीन रहस्यमय बेबीलोन शैली के धर्म में दृढ़ता से विश्वास करता था। इसलिए यह जीवन का एक अभिन्न अंग था। ईसाई इन मूर्ति पूजकों की अपने धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से बहुत कुछ सीख सकते थे, भले ही यह झूठा था, क्योंकि वे इसे अपने जीवन का केंद्र मानते थे। उनके अस्तित्व का हर पहलू उनकी विश्वास प्रणाली से बंधा हुआ था। इस बात से अनजान कि यह शैतान द्वारा रचना की गई एक नकली प्रणाली थी, इसलिए फिरौन ने स्वाभाविक रूप से धर्म के इन विशेषज्ञों, इन अध्यात्मवादियों को अपने करीबी सलाहकारों के समूह का हिस्सा बनाया।
इसके विपरीत बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिकता के प्रतिनिधि नहीं थे, वे मिस्र के बुद्धिजीवी थे। वे सांसारिक ज्ञान और विज्ञान का प्रतिनिधित्व करते थे जो मिस्र में इतने उच्च स्तर तक विकसित हो चुका था। फिरौन इन लोगों को अपने सपनों के बारे में बताता है, लेकिन वे चुप खड़े रहे क्योंकि उन्हें उनके अर्थ के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया। मुख्य प्याला वाहक, जिसे 2 साल पहले फिरौन ने कैद कर लिया था, अब अनिच्छा से आगे बढ़ता है। यह फिरौन को यूसुफ के बारे में बताता है, जिसने उसके और मुख्य रसोइये के सपनों का सही अर्थ बताया था। फिरौन तुरंत यूसुफ को अपने सामने लाने का आदेश देता है। फिरौन यूसुफ से कहता है कि उसने सपने देखे हैं, जिनकी व्याख्या उसके सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छे लोग भी नहीं कर सकते, लेकिन उसे बताया गया था कि यूसुफ कर सकता है। यूसुफ पूरी सच्चाई से जवाब देता है, यह मुझमें नहीं है, परमेश्वर फिरौन को उसका उत्तर देगा। और यह हिंदू दास यूसुफ फिरौन और मिस्र के सबसे प्रशंसित धार्मिक नेताओं और बौद्धिक अभिजात वर्ग के साथ खड़ा है, जिसे वह करने के लिए कहा जा रहा है जो वे संभवतः नहीं कर सकते थे, क्योंकि देह ऐसा करने के लिए सुसज्जित नहीं थे। चूंकि वास्तव में ये पवित्र सत्य के भविष्य सूचक सपने थे जो परमेश्वर ने फिरौन को दिए थे, तो सांसारिक ज्ञान और झूठे, हालांकि ईमानदार, धर्म का सरल, पूरी तरह से अपर्याप्त उपयोग उनके अर्थ को कैसे समझ सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन यह हमेशा रहेगा कि केवल परमेश्वर के बच्चे पिता के साथ आध्यात्मिक एकता में सत्य को जान सकते हैं। और यूसुफ फिरौन को सत्य की घोषणा करने वाला है। सबसे पहले यूसुफ ने स्पष्ट किया कि ये सपने परमेश्वर की ओर से हैं। इसके बाद उसने फिरौन को बताया कि ये दोनों सपने एक ही मामले से संबंधित हैं, आने वाला भयंकर अकाल। पहला सपना गायों के बारे में था, पहले 7 स्वस्थ गायें, फिर 7 बीमार गायें। दूसरा सपना मकई के बारे में था, पहले मकई के 7 स्वस्थ, फिर 7 बीमार। यह महत्वपूर्ण था कि 2 सपने थे, क्योंकि एक पशुधन से संबंधित था और दूसरा खेत की फसलों से, यानी खाद्य आपूर्ति के दोनों प्रमुख तत्व आने वाली चीजों से प्रभावित होने वाले थे। जैसा कि परमेश्वर का तरीका है, वह उन लोगों के लिए पर्याप्त चेतावनी के बिना न्याय नहीं करता जो उस पर ध्यान देते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि 7 साल पहले खाद्य वृद्ध और फसल के 7 अद्भुत असामान्य प्रचुर वर्ष होंगे, सामान्य उत्पादन से कम नहीं, लेकिन भयानक अकाल होगा।
इसके बाद यूसुफ की ओर से आने वाली परीक्षा के बारे में ज्ञान आता है। बेशक ज्ञान की प्रकृति ऐसी है कि हमें इसके खोद के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता, वह सभी का निर्माता है। यूसुफ ने संक्षेप में कहा, फिरौन, अगले 7 सालों के दौरान यह कानून बनाऊं कि पूरे मिस्र में सभी उत्पादन का 20% उस दिन के लिए संग्रहित किया जाएगा, 7 साल बाद जब इसकी जरूरत कमजोर समय के लिए होगी। 7 साल के असामान्य रूप से भरपूर समय के दौरान विशेष रूप से उच्च जीवन जीने के बजाय बुद्धिमान बने और उस समय का उपयोग तैयारी के लिए करें। मुझे संदेह है कि लोग इस फैसले से बहुत रोमांचित नहीं थे। आखिरकार जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें समृद्धि ही दिखाई दी। भविष्य उज्जवल लग रहा था, क्षितिज पर एक भी बादल नहीं था। यह नकारात्मकता क्यों? निस्संदेह कई लोगों ने इसे इन घृणित विदेशी हिक्सोस शासकों की साजिश के रूप में देखा, ताकि वे लोगों से भोजन जब्त कर सकें और किसी तरह खुद को समृद्ध बना सकें। अपनी आंखों के बजाय परमेश्वर पर विश्वास करना कितना मुश्किल है, खासकर जब चीजें अच्छी चल रही हों। लेकिन यूसुफ को गंभीरता से लेने और उस पर अमल करने के लिए फिरौन को बहुत श्रेय देना होगा, न कि केवल इस पर विचार करने के लिए।
मैं सोचता हूं, क्या हमारे पास वह करने का विश्वास होगा जो यह विधर्मी फिरौन करने वाला था? क्या हमारे पास यह सुनने का विश्वास होगा कि परमेश्वर से भयानक क्लेश का समय निकट आ रहा है और हमें अपना कुछ समय, अपनी संपत्ति, अपने श्रम, अपनी रुचियों, अपने आप को अलग रखकर तैयारी करने की आवश्यकता है? क्या हम जानबूझकर खुद को वंचित कर सकते हैं जब हम बहुतायत के बीच थे, जब जीवन अच्छा था? क्या हम इसे विश्वास के आधार पर कर सकते हैं, न कि अपनी आंखों से जो हम देखते हैं उसके आधार पर? क्या हम ऐसा तब कर सकते हैं जब सबसे अच्छे और सबसे प्रतिभाशाली दिमाग और हमारे सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक नेता हमें बताते हैं कि भविष्य अज्ञात है सिवाय इसके कि वे इसे अपने अधिकार के पदों से समझ सकें। प्रिय, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमें बताया गया है। हम अभी सापेक्षिक प्रचुरता और प्रचुरता के उस समय में हैं जो मानव जाति द्वारा अनुभव की गई या कभी अनुभव की जाने वाली सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत से ठीक पहले है। मैं ये कैसे जान सकता हूं? परमेश्वर ने हमें यह प्रकट किया है, उसने हमें अपने वचन में दिखाया है कि किन संकेतों पर ध्यान देना है और वे घटित हुए हैं और हो रहे हैं। उसने हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि जब यरूशलेम यहूदियों के हाथों में वापस आ जाएगा तो वह पीर ही प्रभु के आगमन को देखेंगी। उसने हमें यह भी बताया है कि यीशु के जैतून के पहाड़ पर फिर से अपने पैर रखने से कुछ महीने पहले एक ऐसा भयानक समय होगा जिसे हम संभवतः समझ नहीं सकते। उसने हमें तैयार रहने के लिए कहा है, अपने जीवन को उसके हवाले करके तैयार हो जाओ। परमेश्वर से मिलने वाली बुद्धि का पालन करके अपने साधनों के भीतर रहना, कर्ज से बाहर निकलना, व्यक्तिगत सुखों के बजाय उसे खोजना, केवल उसी पर भरोसा करना सीखना और किसी और चीज पर नहीं। उस पर भरोसा करना, उस पर विश्वास करना, न कि हमारी शारीरिक इंद्रियों और भ्रष्ट बुद्धि द्वारा बताए गए पर। क्योंकि हम में से जो लोग अपने समय में तैयारी नहीं करेंगे उन्हें मिस्र की तुलना में कई गुना अधिक विनाश का सामना करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे अधिकांश धार्मिक नेता इसके प्रति अंधे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे अकादमिक अभिजात वर्ग इसका उपहास करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी सरकार हर चीज को भू राजनीतिक वास्तविकताओं के संदर्भ में देखती है और हमारे कानून निर्माता चीजों को व्यक्तिगत शक्ति प्राप्त करने और बनाए रखने के संदर्भ में देखते हैं। क्योंकि हमारे अधिकांश धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक नेता वास्तविकता से उतने ही अनजान हैं जितने कि फिरौन के बुद्धिमान लोग और जादूगर थे। आप देखिए, ईश्वर ने उन्हें सत्य नहीं सौंपा है, उन्होंने इसे हमें सौंपा है, उनका सच्चा चर्च। चर्च संस्था का दिखावा नहीं जिसमें नौकरशाही और मानव निर्मित सिद्धांत हैं, बल्कि उनके लोग, उनके अनुयायियों, मसीह के रक्त के माध्यम से पवित्र किए गए हैं।
फिरौन के लिए अगला सवाल यह था कि जो कुछ भी किया जाना है उसे कौन सुनिश्चित करेगा। जवाब स्पष्ट था, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने संदेश देने के लिए चुना था उसे ही तैयारी करनी चाहिए थी, यूसुफ। सबसे अप्रत्याशित घटनाओं में से एक में इब्रानी दास को काल कोठरी से निकालकर पूरे मिस्र का शासक बना दिया जाता है। यूसुफ को बाहर के कमरे से पेंट हाउस में भेज दिया जाता है और एकमात्र उच्च अधिकारी फिरौन ही होता है।
एक समारोह आयोजित किया गया ताकि सभी मिस्रवासी यूसुफ की स्थिति को जान सकें। इस समारोह के भाग के रूप में फिरौन ने यूसुफ को एक नया नाम दिया, जाफिनात पनिया। आज हम यूसुफ के नाम की जिस रूप में देखते हैं वह मिस्र और हिंदू शब्दों का एक संकर है। विद्वानों का कहना है कि इसका अर्थ या तो ईश्वर बोलता है वह जीवित है, या इसका अर्थ है जीवन का निर्माता और पालनकर्ता। हाल ही में किए गए शोध इस पर संदेह करते हैं। यह अधिक समझ में आता है कि यह नाम पूरी तरह से मिस्र का है और वास्तव में हम पाते हैं कि मिस्रियों के नामकरण में एक सामान्य शब्द का उपयोग किया जाता है, जैट एन ए एफ, और इसका अर्थ है वह जिसे बुलाया जाता है। यूसुफ के नए नाम का दूसरा शब्द पनिया भी मिस्र की भाषा में काफी आसानी से पहचाना जा सकता है। मिस्र में जीवन के लिए अनेह एक सामान्य शब्द था, इसलिए उनके नाम का मिश्री अर्थ संभवतः वह जिसे जीवन कहा जाता है की पंक्तियों से ही कुछ अलग था।
हमारे समय में नाम किसी व्यक्ति की पहचान का एक तरीका मात्र है, लेकिन प्राचीन समय में नाम उससे कहीं अधिक था। नाम व्यक्ति की प्रतिष्ठा होता था, ये व्यक्ति के चरित्र और गुणों या शायद समाज में उसकी स्थिति का विवरण होता था। इस प्रकार जब यूसुफ घर के गुलाम से कैदी मिस्र के वजीर के रूप में बदल गया तो एक नया नाम आवश्यक था, ऐसा नाम जो यूसुफ की स्थिति और उद्देश्य के बारे में फिरौन के दृष्टिकोण को दर्शाता हो और यूसुफ की नियुक्ति को पक्का करने और उसे स्थायी बनाने के लिए और बिना किसी संदेह के यूसुफ की वफादारी हासिल करने के लिए फिरौन ने यूसुफ को एक पत्नी दी अस्नेथ, एक पुजारी की बेटी थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। यह पुजारी सूर्यदेव के शहर के मंदिर का था। उस समय यह मंदिर परमेश्वर का सम्मान करता था, जिसे बाद में अतुमरे कहा गया। रे मिस्र के सर्वोच्च देवता थे। बाद में शहर काहिरा से लगभग 7 या 8 मील उत्तर में हेलियोपोलिस सूर्य के शहर के रूप में जाना जाने लगा। इसलिए यूसुफ ने सूर्य देवता के पुजारी की बेटी से विवाह किया। एक बार जब समारोह संपन्न हो गए तो यूसुफ ने पूरे मिस्र में यात्रा करना शुरू कर दिया। एक व्यवस्था स्थापित की और यह सुनिश्चित किया कि बहुत अधिक मात्रा में अनाज बचाया और संग्रहित किया जाए। हमें बताया गया है कि परिवार के 6 साल पहले बहुत ज्यादा अनाज था। बाइबल शब्द का अर्थ है कि 6 साल तक भरपूर फसल हुई। 6 साल बीत गए, अकाल शुरू होने में 1 साल बाकी है। अब यूसुफ के 2 बेटे हैं, मिस्र की पत्नी, सबसे बड़ा बेटा मनश्शे और सबसे छोटा बेटा एप्रेम। वैसे ये इब्रानी नाम है, मिस्री नहीं। हालांकि उन दिनों के रीति रिवाजों के कारण, जो आज भी इब्रानी और कई अन्य संस्कृतियों में समान है, मां की राष्ट्रीयता और वंशावली ने बच्चों की राष्ट्रीयता निर्धारित की। इसलिए उनके इब्रानी नामों के बावजूद ये दोनों लड़के बिना किसी संदेह के मिस्र के बच्चे थे। अब एक इजरायली की विदेशी मां अपनी राष्ट्रीयता और देवताओं को त्याग सकती थी और इसराइल की सदस्य बन सकती थी। अगर ऐसा हुआ तो मां को अब विदेशी नहीं माना जाता था उसकी वंशावली के बावजूद, बल्कि इब्रानी माना जाता था। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। यूसुफ के बच्चों की मां आसंत मिस्री थी और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने अपनी मिस्री पहचान छोड़ी थी। वास्तव में सूर्य देवता के पुजारी की बेटी और मिस्र की राजकुमारी के रूप में उसकी स्थिति को देखते हुए इब्रानी बनना अकल्पनीय होता। अस्नेथ, मनश्शे और एप्रेम के बारे में इस महत्वपूर्ण तथ्य को अपनी यादों में संजो कर रखिए। हमने पहले भी इस बारे में कई तरह से बात की है, लेकिन याद रखें, ये 2 पोते जिनके बारे में याकूब को अभी तक पता भी नहीं है, एप्रेम और मनश्शे, यूसुफ के ये 2 बच्चे जो उसकी मिस्री पत्नी से पैदा हुए थे, सभी के हिसाब से मिस्री हैं, गैर यहूदी। यह भी ध्यान दें कि तोरह 51 और 52 पदों में 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्ट है। पहला, एप्रेम का अर्थ है उपजाऊ, जिसका अर्थ है प्रचुर मात्रा में। हम इसे बाद में उत्पत्ति में याकूब द्वारा एप्रेमम को दिए गए भविष्य सूचक आशीर्वाद में भी देखेंगे। लेकिन यह भी ध्यान दें कि यूसुफ ने किसी भी तरह से मिस्र को दुश्मन नहीं माना, बल्कि वह मिस्र को एक दोस्त, यहां तक कि एक आराम की जगह के रूप में देखता है। वह इसे एक तरह के प्रतिस्थापन घर के रूप में भी संदर्भित करता है। अतः जबकि हम अंततः इब्रानियों को मिस्र के दास बनते देखेंगे, हम बाइबल में मिस्र के प्रति परमेश्वर की एक निश्चित कृपा भी पाएंगे, विशेष रूप से अंतिम दिनों में। खैर, अकाल ठीक वैसा ही हुआ जैसा परमेश्वर ने कहा था, लेकिन हमें यहां कुछ ऐसा भी बताया गया है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह अकाल व्यापक था। अब कई बाइबल कहती हैं कि अकाल पूरी दुनिया में भयंकर था, लेकिन इब्रानी में ऐसा नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अकाल इरेट्स के पनिम, भूमि के चेहरे पर फैल गया। यह एक बहुत ही सामान्य शब्द है। ऐसा शब्द नहीं है जो पूरे ग्रह पृथ्वी के सभी ज्ञात और अज्ञात भूमि क्षेत्रों को इंगित करने का प्रयास करता है। हालांकि जैसा कि हम थोड़ी देर में जानेंगे, न केवल मिस्र बल्कि पूरा मध्य पूर्व भी इससे प्रभावित हुआ। और ध्यान दें कि संग्रहित अनाज का वितरण कैसे हुआ, इसे राशन में बांटा गया या बेचा गया, अनाज को किसी को नहीं दिया गया। उस समय के मिस्र के अभिलेख अकाल का वर्णन करते हैं और अनाज वितरण कैसे किया गया यह पाया गया है, और वे बाइबल के अभिलेख को पूरी तरह से सही साबित करते हैं, जिसका हम जल्द ही सामना करेंगे। हम जो जानते हैं वह यह है कि जब लोगों के पास पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने अपने भूखे मवेशियों को फिरौन को अनाज मुख्य भोजन के बदले में दे दिया। जब उनके पास मवेशी खत्म हो गए तो उन्होंने अपनी जमीन दे दी।
और जब उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा तो उन्होंने खुद को फिरौन के बंधुआ दास्ता में बेच दिया। इस तरह फिरौन ने अंततः मिस्र की सारी जमीन और सारी दौलत अपने नाम कर ली। इसने उसे शानदार मंदिरों, सड़कों और शहरों का निर्माण करने के लिए एक विशाल दास वर्ग कार्यबल बनाने की भी अनुमति दी। ये कितना भी निंदनीय और कठोर क्यों ना हो, परमेश्वर ने इस स्थिति का उपयोग जीवन बचाने के लिए किया और इज़राइल के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतिम विचार, और हम आगे बढ़ेंगे। मुझे आश्चर्य है कि मिस्र के लोगों ने अकाल के इस समय में यूसुफ के बारे में क्या सोचा होगा। क्या आपको लगता है कि उन्हें अनाज बचाने के लिए मजबूर करने के लिए धन्यवाद दिया गया था बहुतायत के समय में कम से काम चलाना, जिससे उन्हें बाद में जीवित रहने की अनुमति मिली, या क्या उसे दोष और उनकी नफरत मिली जब इतने सारे लोगों को उस अनाज को प्राप्त करने के लिए खुद को गुलामी में बेचना पड़ा?
आखिरकार फिरौन ने यूसुफ को अग्रणी व्यक्ति बनाया था। यूसुफ इस कार्यक्रम का सर्वोच्च प्रशासक था, और जैसा कि हमने देखा कि फिरौन ने एक बड़ा सार्वजनिक समारोह आयोजित किया था। सभी को यह स्पष्ट कर दें कि यूसुफ की स्थिति क्या थी। सभी चालाक राजनेता अपने और लोगों के बीच किसी को रखते हैं जो बफर और लाइटनिंग रॉड दोनों के रूप में कार्य करता है। जब चीजें अच्छी होती हैं तो राजनेता लोगों का श्रेय और प्रशंसा स्वीकार करने के लिए आगे आता है, लेकिन जब कुछ गलत होता है या अलोकप्रिय होता है तो राजनेता चुप हो जाता है और अदृश्य हो जाता है, और सामने वाला व्यक्ति आलोचना का शिकार होता है। कुछ मुझे बताता है कि मिस्र के लोगों की निजी भूमि से अनाज की जब्ती और फिर उनके अपने अनाज को वापस उन्हें बेचने के आसपास की इस घटना से बची हुई करवाहट अक्सर उनकी अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कुछ समय बाद चीजें कैसे हुई इसके लिए बहुत कुछ करना था, क्योंकि यह यूसुफ की मृत्यु के बाद था और नए फिरौन के स्थान पर थे, और यूसुफ का परिवार इब्रानी बराह हो गया था
और समृद्ध हो गया था। तब मिस्र के बेदखल लोगों ने उनका विरोध किया। इस तरह के अकाल की स्थिति को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, और यह अकल्पनीय है कि मिस्र द्वारा यूसुफ के परिवार को गुलाम बनाकर उन पर पलटवार करने से इसका कोई खास संबंध नहीं था।
अगले सप्ताह अध्याय 42।